आईएएस की परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा साथियों, नमस्कार। दोस्तों, जानबूझकर मैंने आईएएस का नाम लिया है और वो इसलिए कि कल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो आज मुख्य विषय के तहत मैं इसी पर कुछ आप सब से बातें करना चाहूँगा, खासकर इसको लेकर के कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो मैं कुछ विकल्प आपके सामने रखूँगा ताकि आप जितना भी बेहतर हो सके उतना बेहतर निर्णय ले सके। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं, क्योंकि दूसरी घटनाओं की संख्या आज काफी है। आपने न्यूज में सुना होगा, अखबारों में भी कहीं कहीं छोटे छोटे अक्षरों में दिया हुआ है कि जो संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, संयुक्त राष्ट्र आप जानते हैं, और महासभा का मतलब है आप तरह से जैसे हमारा जो संसद है, है ना, जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, महासभा, जनरल असेंबली, जैसे गांव की ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है। तो दोस्तों, उसमें भारत ने एक प्रस्ताव दिया था और उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। याद रखिए, भारत ने प्रस्ताव दिया था और उसे स्वीकार कर लिया गया है। और प्रस्ताव क्या था कि वर्ष 2023 को, अंडरलाइन कर रहा हूं, वर्ष 2022 को नहीं, वर्ष 2021 को नहीं, वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, इंटरनेशनल, और इसके बाद जो अंग्रेजी का शब्द है वो है मिलेट्स ईयर। अब देखिए कि अखबारों में जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़े से अलग अलग शब्द मिलेंगे। कहीं अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मिल जाएगा, न्यूज में भी कहीं अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष कहा गया है, और कहीं कहीं अंतर्राष्ट्रीय ज्वार वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी कहा गया है। न्यूज में तो बाजरा वर्ष था लेकिन अखबारों में ज्वार वर्ष भी कहा गया। तो ये मामला क्या है, कोई मोटा वर्ष अनाज वर्ष कह रहा है, कोई ज्वार, कोई बाजरा, ये क्या है? देखिए, इंग्लिश में जो मिलेट्स है उसे आप मोटा अनाज कह सकते हैं, क्योंकि जो मिलेट्स है उसके तहत कई तरह के अनाज आते हैं। ज्वार भी इसी के अंतर्गत आता है, बाजरा भी इसी के अंतर्गत आता है, जौ भी इसी के अंतर्गत आता है। अगर छत्तीसगढ़ के आप श्रोता हैं तो कोदो नाम आपने सुना होगा, खूब चलता है वहां, कोदो भी इसी के अंतर्गत आता है। रागी आजकल बहुत प्रचलित शब्द हो गया है, रागी भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये ढेर सारे जो अनाज हैं ये मिलेट्स ग्रुप के हैं, इसीलिए आप इसे मोटा अनाज वर्ष कह सकते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि ये बहुत ही विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होता है, इसमें फाइबर्स खूब होते हैं, मिनरल्स भी खूब होते हैं, और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा ये होता है। मैंने देखा है कि जो जिम जाने वाले जो नौजवान हैं वो अब मोटा अनाज खाने की तरफ बहुत ज़्यादा झुक रहे हैं। दोस्तों, भारत के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें जलवायु को बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत होती है। जो मोटा अनाज होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत उपजाऊ भूमि नहीं चाहिए, तो भारत के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कृषि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अर्थव्यवस्था में कृषि का जो रोल है वो आप जानते हैं। भारत ने प्रस्ताव रखा है, विश्व ने स्वीकार किया है, तो ये मान करके चलिए कि जो मोटा अनाज है ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। तो इसकी कैसे खेती की जानी चाहिए, क्या संभावनाएं हैं, इससे क्या इंपैक्ट हो सकता है, इसको लेकर के आप एक टॉपिक तैयार करें। यदि वक्त हुआ तो डेफिनेटली मैं इस पर मुख्य विषय के अंतर्गत बात करूंगा। न्यूज में आपने चाबहार दिवस के बारे में सुना, देखिए दो शब्द हैं, कहीं कहीं आपको ये चा बहार शब्द लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं चाह बहार शब्द लिखा हुआ मिलेगा, और ये दोनों सही है, चूंकि अरबी का भाषा का शब्द है तो दोनों ही लगभग आप कह लीजिए कि सही हैं। अब के इसमें जब भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये जब चार बहार बंदरगाह के उसके दो भाग हैं, तो उसके एक भाग को जब विकसित करने की बात आई तो उसमें तीन देशों ने साइन किए हैं, तीन देशों के सहयोग से है ये, जिसमें भारत है, ईरान है और अफगानिस्तान भी है, याद रखिए। लेकिन ये जो बंदरगाह है ये ईरान में स्थित है, पहली बात, ओमान की खाड़ी में स्थित है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। भारत का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है और भारत सबसे ज्यादा इसको तरजीह इसलिए दे रहा है क्योंकि इसके विकसित हो जाने पर अब हम बाकायदे जो मध्य एशिया का भाग है वहां तक बड़े आराम से पहुंच जाएंगे, और जो सामान के परिवहन की जो लागत है वो लगभग 60% कम हो जाएगी और वक्त भी कम लगेगा, 50% वक्त लगेगा। तो भारत के लिए चाबहार बंदर का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चाबहार दिवस की भी बात कल के न्यूज में थी। कल ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया, जीवन सुगमता सूचकांक 2020, और साथ ही साथ नगर पालिका निष्पक्ष उत्पादन सूचकांक 2020 जारी किया गया है। आपको शायद पढ़ करके अच्छा लगा होगा, बशर्ते कि आप बेंगलोर के रहने वाले हों या पुणे में रह रहे हों या अहमदाबाद में रह रहे हों, कि आपके जो शहर हैं, ये जो तीन शहर जो मैंने बताए हैं क्रमशः भारत के सबसे अच्छे शहरों में शामिल किए गए हैं। नगर पालिका निष्पादन के तहत भी सूचकांक जारी किया गया, अखबारों में दिया हुआ है, मैं डिटेल में नहीं जाता। मुझे नहीं लगता कि सूचकांक के एक इस क्रम को सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पूछेगा, लेकिन इस घटना का आप इस्तेमाल इस रूप में कह सकते हैं कि किस तरह से आप देखिए कि जब हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं तो केवल आर्थिक क्षेत्रों में ही प्रतिस्पर्धा की स्थितियां पैदा नहीं की जा रही हैं, बल्कि जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी प्रतिस्पर्धा पैदा की जा रही है। जैसे अब शहरों में कौन सा शहर सबसे अच्छा है, तो प्रतिस्पर्धा कर दिया तो हर शहर कोशिश करेगा कि हमारा शहर अच्छा हो। इसके बाद आपने नगर पालिकाओं के लिए भी कर दिया, तो अब नगर पालिकाएं भी और जो नगर निगम हैं, जो लोकल अथॉरिटीज लोकल बॉडीज हैं, वो भी कोशिश करेंगे कि अरे हमारा नाम आया और अगर हमारा एक बार नाम आ गया है तो हम उसे बनाए रखें। जैसे इंदौर को ही देख लीजिए, वो लगातार बहुत बेहतर कर रहा है, तो इंदौर हमेशा कोशिश करेगा कि नहीं नहीं हमारा बना रहे तो सस्टेन करने के लिए वो कोशिश करेगा। तो इस तरह से एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति आएगी और फिर सामाजिक बदलाव और जो दूसरे बदलाव की हम अपेक्षा करते हैं उन्हें इससे मदद मिलती है, राइट? दोस्तों एक न्यूज और भी थी, हमारे विदेश मंत्री जो वहां गए हुए बांग्लादेश, बांग्लादेश वाले न्यूज में दो वाक्य आपने सुने होंगे। एक तो यह है कि बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शती समारोह मनाई जा रही है। इन्हीं के नेतृत्व में बांग्लादेश आजाद हुआ था और 50 साल पहले आजाद हुआ था 1971 में, तो बांग्लादेश का मुक्ति वर्ष भी 50 वर्ष पूरे कर रहा है। तो ये दो समारोह थे। उसी के तहत आपने एक और शब्द सुना होगा, पड़ोसी प्रथम, नेबर फर्स्ट। ये हमारी जो पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, उस नीति का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंश है पड़ोसी प्रथम, यानी कि हम अपने पड़ोसियों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करेंगे, उनकी सबसे ज्यादा पहले मदद करेंगे, उन पर ध्यान देंगे और हम बराबरी का व्यवहार करेंगे। क्योंकि अब देखिए हमारे जो पड़ोस में देश हैं वो बहुत ही छोटे छोटे देश हैं, चाइना को छोड़ दीजिए, अब ये छोटे भाई की तरह हैं। और अगर हम बहुत बड़े राष्ट्र इतिहास की दृष्टि से भी और संसाधनों की दृष्टि से भी जनसंख्या की दृष्टि से भी तो हम बड़े भाई हैं, तो अब बड़े भाई की तरह अगर हम थोड़ा सा दादागिरी वाला इस्तेमाल करेंगे और सोचेंगे कि भैया यही हमारे पास आएगा तो वो जरा सा मुश्किल है। तो भारत ने अपनी विदेश नीति को बदला है, इसी के तहत आप नेबर फर्स्ट की बात करते हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, एक्ट वेस्ट की बात करते हैं, तो ये सब लगभग इसी से ही जुड़े हुए हैं। तो ये शब्द भी आपने सुना होगा। जब भी आप ऐसे न्यूज़ सुने तो बेहतर होता है कि थोड़ा सा रुक करके आप उन्हें दोहरा लें तो दिमाग में वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और जब इस तरह की क्लैरिटी बनी रहती है ना, तो जब आप प्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको बहुत मदद मिलती है, क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल तरोताजा रहता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके ये कुछ तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर, और वो ये है कि यूपीएससी का जो विज्ञापन है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहें, तो वो जारी कर दिया गया है। मेरे पास इस बीच में बहुत सारे मेल आ रहे थे और मैं उन मेल को पढ़ने के बाद समझ सकता था कि उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब यूपीएससी का कभी भी विज्ञापन आएगा ना और आप जरा सा भी उसके लिए इंक्लिनेशन रख रहे हैं, यानी झुकाव रख रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा, हल्ला मच जाएगा। वो 1980 का युग खत्म हो गया जबकि ढूंढना पड़ता था कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब तो आने से पहले ही हल्ला शुरू होने लगता है कि भैया महाराज आ रहे हैं, तो पता लग गया अब आपको कि वो आ गए हैं। मुझे लगता है कि आपकी अब चिंता खत्म हो गई होगी। दोस्तों, नोटिफिकेशन आ गया और उसमें क्या क्या है, डेट क्या है, क्या है, मैं ये बताने आपको नहीं जा रहा हूं। मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि ये सब बताना आप सबका अपमान करना है। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें आप एक पढ़ेंगे 10 समझेंगे और भी ढेर सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। खासकर मेरा मकसद इस विषय को लेने का यह है कि आपको क्या करना चाहिए, बस केवल मैं इस पर थोड़ी सी बातें आपसे करूंगा। पहली बात देखिए कि अगर आप इससे पहले एग्जाम देते रहे हैं और आपने बिल्कुल मन बना लिया है कि इस बार भी आपको देना है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने की भी जरूरत नहीं है। प्लीज एक दो दिन में ही आप इसे कर डालिए, बेहतर होगा कि आज ही इसे कर डालिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा आपको नहीं भरना है, ऐसी जानकारी नहीं देनी है कि वो आपको कहीं से जुटाना है, लाना है, समझना है, समझाना, ऐसा कुछ नहीं है। अब बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि आखिरी में स्टूडेंट, सर वो लेट हो गया है, अब हम क्या करें, ये बहुत गलत आदत है और व्यक्तित्व का वह आप कमजोर हिस्सा है जो सिविल सर्वेंट बनने में आपको रोकेगा भी। आप कर डालिए। अगर आप द्वंद में हैं कि मैं भरूं या न भरूं, तब क्या करेंगे? अगर आप द्वंद में हैं तो आपको भर देना चाहिए। थोड़े से पैसे लगेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, भर दीजिए। क्योंकि अगर द्वंद में रहने के बाद आपने नहीं भरा और बाद में आपको लगा कि मेरी तो तैयारी हो गई है और मुझे भर देना चाहिए था, तो कोई उपाय नहीं रह जाता। बहुत थोड़ी सी फीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको भर देना चाहिए, राइट? और अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है या बहुत ही सामान्य स्तर की है, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है या उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा बचा हुआ है, मान लीजिए कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, तब फिर आप भरने की जोखिम ले सकते हैं, बशर्ते कि आप पहली बार भर रहे हों। अगर आप कुछ अटेम्प्ट अपने खो चुके हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर आप एक अटेम्प्ट खोएंगे। दोस्तों, ये मान करके चलिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को आप आधी अधूरी तैयारी से क्वालिफाई नहीं कर सकते, भाग्य के भरोसे क्वालिफाई नहीं कर सकते। हो सकता है कि मेरी ये बात आपको डिमोरलाइज करने वाली लगे और मुझ पर आप नाराज भी हों, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझ पर नाराज भले ही होइए, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि जो सही बातें हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊं। अगर आपकी तैयारी अभी अच्छी नहीं है और आपको नहीं लगता है कि जब तक एग्जाम देंगे तब तक तैयारी बेहतर हो जाएगी, तो भरने से कोई फायदा नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपके पास अभी देने के लिए काफ़ी अटेम्प्ट हैं, काफ़ी एज है, तो आप ये सोच करके भर सकते हैं कि चलो मेरे पास तो बहुत अभी एज बाकी है और बहुत अटेम्प्ट भी बाकी हैं, भर देते हैं, एक अनुभव मिल जाएगा। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जो अनुभव मिल जाएगा वो कोई बहुत ज़्यादा इस रूप में काम नहीं करता यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो। अनुभव भी तभी सही मायने में उपयोगी होता है जब आप तैयारी करके आप अनुभव लेते हैं, क्योंकि जो अनुभव है वो तो एक सापेक्ष है ना, रिलेटिव टर्म्स है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिर अनुभव लेने का क्या मतलब है? आप उसको तुलना कैसे करेंगे कि मैंने इतनी तैयारी की थी और इसमें मेरा ये अनुभव रहा और इतना करता तो ये रहा, ये छूट गया है, यहाँ यहाँ मेरी कमजोरियाँ हैं, आप उसका विश्लेषण कैसे करेंगे? कुल मिलाकर के फ्रेंड्स, यह है कि बहुत सोच समझ कर बहुत ही व्यवस्थित, वैज्ञानिक और तार्किक निर्णय लीजिए। इमोशनल डिसीजन मत ले लीजिए, क्योंकि इमोशनल डिसीजन ऐसे मामलों में आपको कहीं नहीं पहुंचाते। हाँ, जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करने लगेंगे तो फिर डेफिनेटली आप इमोशनल तरीके से चार्ज होइए, अपने अंदर ऊर्जा पैदा कीजिए, उत्साह पैदा कीजिए, ताकि आप थके नहीं, आप डरे नहीं, आप रुके नहीं और खूब जोश के साथ अपनी तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मुझे आप सबसे करनी थी। अब मैं आता हूँ उन स्टूडेंट्स के नाम पर जिन्होंने हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए एडमिशन लिया है, ज्वाइन किया है। दो दोस्त हैं, हैदर अली और शक्ति नंदन कुमार, आप दोनों का स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से तीन मित्रों के नाम हैं विक्रम राजपूत, अमन पांडे और शुभम। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार करें, शुभकामनाएं भी स्वीकार करें, मुझे इजाज़त दें, नमस्कार।